गुरु भक्ति योग। अध्यात्म मार्ग में हर एक साधक को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। केवल गुरु ही वास्तविक जीवन का अर्थ एवं उसका रहस्य प्रकट कर सकते हैं तथा प्रभु के साक्षात्कार का मार्ग दिखा सकते हैं। शिष्य के हृदय के अंतस्तल में सुषुप्त दैवी शक्ति को गुरु जागृत कर सकते हैं। प्राकृत स्वभाव में गुरु की सहायता के बिना परिवर्तन करना सरल नहीं है। संस्कारों की शक्ति दृढ़ और बलवान होती है। उनके परिवर्तन के लिए काफी मनोबल की आवश्यकता होती है। पुराने संस्कारों की शक्ति के आगे साधक कई बार निरुपाय हो जाता है। उसे नियमित गुरु से प्राप्त मंत्र, भगवान नाम का जप, कीर्तन, ध्यान अथवा निस्वार्थ सेवा और गुरु के सत्संग से अपने सत्व और संकल्प का असीम विकास करना पड़ेगा। उसे अंतर्मुख होकर अपनी कमियां और दुर्बलताएं खोज लेनी पड़ेंगी। उसे गुरु के मार्गदर्शन में रहना होगा, गुरु की आज्ञाओं का पालन करना होगा। गुरु उसकी गलतियां खोज निकालते हैं और उन्हें दूर करने के लिए योग्य रीति बताते हैं। एक श्रद्धालु राजा एक महात्मा की पर्ण कुटी पर उनके सत्संग सानिध्य हेतु जाया करते थे। राजा ने एक बार उनसे अपने महल में पधारने की प्रार्थना की, परंतु महात्मा ने यह कहकर टाल दिया कि मुझे तुम्हारे महल में बड़ी दुर्गंध आती है, इसलिए मैं नहीं आता। राजा को इस बात से बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन सोचा, महल में तो इत्र फुलेल छिड़का रहता है, वहां दुर्गंध का क्या काम। परंतु भगवान ऐसा क्यों कहते हैं, गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं, पता नहीं। एक दिन महात्मा जी राजा को साथ लेकर नगर में घूमने निकले। भ्रमण करते हुए चर्मकारों की बस्ती में पहुंच गए और वहां एक पीपल की छाया में खड़े हो गए। उनके घरों में कहीं चमड़ा पकाया जा रहा था, कहीं सूख रहा था और कहीं ताजा चमड़ा संवारा जा रहा था। हर घर में चमड़ा था और उससे बड़ी दुर्गंध आ रही थी। जहां महात्मा जी तथा राजा खड़े थे, हवा का रुख भी उसी ओर था। दुर्गंध से राजा की नाक फटने लगी। राजा ने कहा, भगवान दुर्गंध के कारण तो यहाँ खड़ा नहीं रहा जाता, जल्दी आगे चलते। तब महात्मा जी बोले, तुम्ही को दुर्गंध आती है। देखो चर्मकारों के घरों की ओर कितने पुरुष स्त्रियां और बाल बच्चे हैं। कोई घर का कार्य करने में लगा है, कोई खा पी रहा है, कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं, बच्चे हंस खेल रहे हैं। किसी को तो दुर्गंध नहीं आती, फिर तुम्ही को क्यों आ रही है? राजा ने कहा, भगवान, चमड़ा कमाते कमाते तथा चमड़ों के बीच में रहते रहते इनका अभ्यास हो गया है। इनकी नाक ही चमड़ों की दुर्गंध की ऐसी आदि हो गई है कि इन्हें चमड़ों की दुर्गंध नहीं आती, पर मैं तो इसका अभ्यास ही नहीं हूँ। जल्दी चलिए, अब तो एक क्षण भी यहाँ नहीं ठहरा जाता। महात्मा जी मुस्कराए और बोले, राजन, यही हाल तुम्हारे राजमहल का भी है। विषय भोगों में रहते रहते तुम्हें उनमें दुर्गंध नहीं आती, तुम्हारा अभ्यास हो गया है। परंतु मुझको तो विषय देखते ही उल्टी सी आती है, इसी से मैं तुम्हारे राजमहल में नहीं जाता हूँ। विष तो मनुष्य को एक बार मारता है, परंतु विषय विकार भोग विलास तो जीव को बार बार जन्म मृत्यु रूपी संसार की असह्य दुखद नारकी योनियों में धकेलते रहते हैं। राजा ने रहस्य समझ लिया। महात्मा जी हंसकर राजा को साथ लिए वहाँ से चल दिए। महापुरुषों की वाणी में अद्भुत रहस्य छिपे रहते हैं, उनके संकेत बड़े विलक्षण होते हैं, उनकी युक्तियाँ जीव को संसार सागर से पार ले जाने वाली होती हैं। वे विषय विकारों में फंसे जीव को निर्विषय आत्मानंद की ओर ले जाते हैं। उनके कृपा प्रसाद से मनुष्य पूर्ण परमात्मा को उपलब्ध होता है। ऐसे सतगुरु ही प्राणी मात्र के परम सुहृद व हित चिंतक होते हैं। उनकी आज्ञाओं में चलकर अपने जीवन का निर्माण करना ही एकमात्र ध्येय होना चाहिए।